प्रिय मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 17 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने एक अलग ही तरह का विषय चुना है इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए। दरअसल कल मुझे जो मेल मिले उसमें पहला ही जो मेल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग मेल था और मैं चूंकि वो मेल में उन्होंने अपनी तरफ से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और ये हमारे अपने बैच के स्टूडेंट का ही मेल था, तो मुझे लगा कि जो बात इन्होंने कही है वाकई न केवल लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बल्कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए या छोटा से छोटा काम भी हम क्यों न करें उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चूंकि उन्होंने मेल के अंदर ये बात लिखी है तो मैं इस बार उनका नाम लेकर के अपने लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत कर रहा हूं। अदरवाइज जनरली मैं लाइफ मैनेजमेंट में नाम मेंशन करता नहीं हूं। इनका नाम है कमलेश कुमार कमल। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये कहां से हैं और हमारे किस बैच के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक छोटा सा मेल बिल्कुल एक लाइन का है। संबोधन के बाद वाकई में एक लाइन में उन्होंने बात खत्म कर दी है लेकिन बहुत वजनदार है, इसलिए मैंने इसे चुना है। तो कमलेश ने लिखा है, डियर सर, फिर लाइन बदल दी है, आई रेस्पेक्ट यू लाइक लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा को उन्होंने इन्वर्टेड में लिखा है, मतलब मैं मान सकता हूं कि वो उनकी भाषा अच्छी है और किस तरीके से लिखा जाना चाहिए उनको बहुत अच्छे से ये बात भी मालूम है। आई रेस्पेक्ट यू लाइक लॉर्ड कृष्णा। Before class, I was confused Arjun and after class, I am intellectual, so thanks sir. ये एक लाइन में पूरा हो गया है। मित्रों, उनके कहने का मतलब है कि प्रिय सर, मैं आपकी भगवान कृष्ण की तरह आपका सम्मान करता हूं। क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं उसी तरह से भ्रम में था जैसे कि अर्जुन था और अब क्लास के बाद मैं बौद्धिक व्यक्ति बन गया हूं, आई एम इंटेलेक्चुअल, इसके लिए आपको धन्यवाद सर, सो थैंक्स सर, ये उन्होंने कहा है। मित्रों, बात बहुत छोटी सी है लेकिन इस छोटे में बात बहुत बड़ी भी है और आज मैं इसी को अपने लाइफ मैनेजमेंट का आधार बना रहा हूं। दोस्तों, महाभारत में हमारे पास तीन बड़े इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, उनसे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहां मैं तीन करेक्टर्स को लेकर चल रहा हूं। पहले अर्जुन, जिसकी चर्चा कमलेश ने अपने मेल में की है। दूसरे हैं कृष्ण, उनकी भी चर्चा इस मेल में है। और तीसरे हैं दुर्योधन। ये तीन करेक्टर हैं। मित्रों, आप इन तीनों करेक्टर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो चरित्र के मूल में है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना, विजेता बना। दुर्योधन जो पराजित हुआ, बुरी तरह से पराजित हुआ और जो अपनी प्रजा का, अपने लोगों का या यहां तक कि आने वाली पीढ़ी का भी स्नेह पात्र नहीं बन सका। हम सब दुर्योधन को पसंद नहीं करते हैं। और तीसरे है कृष्ण, जो ईश्वर बने या ईश्वर थे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, जो माने, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो ईश्वर बने। ये तीन करेक्टर हमारे पास हैं। तीनों की जो उपलब्धियां हैं वो आपने देख ली। मित्रों, इनके केंद्र में क्या है, इन तीनों की उपलब्धियों के केंद्र में क्या है, आइए हम थोड़ी सी इनकी चेतना का जो टेक्स्चर है, टेक्स्चर को आप क्या कहेंगे, उसकी जो बनावट है, उसकी जो अनुभूति है, जैसे आप कपड़ा छू करके देखते हैं ना तो उसका टेक्स्चर पता लगता है, कपड़ा कितना मुलायम है, कितना अच्छा है, ठीक उसी तरह से मैं चेतना के टेक्स्चर की बात कह रहा हूं। हालांकि चेतना का टेक्स्चर शब्द आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन अटपटा है नहीं मित्रों, बड़ा प्यारा शब्द है। तो मित्रों, देखिए कि जो अर्जुन है, अर्जुन भ्रम में रहता है, द्वंद में रहता है। अभी ही नहीं बल्कि आगे पीछे भी अर्जुन द्वंद और भ्रम में घिरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन अर्जुन का सौभाग्य यह है कि कृष्ण जैसा साथी और सारथी उनको मिला हुआ है। या कह लीजिए कि हम सौभाग्य की भी बात न करें कि अर्जुन की यह विशेषता है कि उसने कृष्ण जैसे को अपना मित्र बना रखा है। ये भी देखिए, मित्र मिलना एक बात है लेकिन उस मित्रता को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। दुर्योधन भी कृष्ण को मित्र के रूप में मिला था, वो बना करके नहीं रख सका, वो बात अलग है। तो अर्जुन एक भ्रमित चेतना का प्रतीक है, वो भ्रम में फंस जाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, जिसे आप कह सकते हैं द्वंद में फंस जाता है, मानसिक द्वंद में फंस जाता है, या यूं कह लीजिए कि डिसीजन लेने में उसके मन दिमाग में कुछ धुंधलापन छा जाता है, या यूं कह लीजिए कि वो दुविधा से ग्रस्त हो जाता है। दूसरी तरफ है दुर्योधन। मित्र दुर्योधन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो द्वंद ग्रस्त नहीं है, वो कोई दुविधा में नहीं रहता, कोई उसके दिमाग में धुंधलापन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। और एक कई जगह उसने कहा भी है कि मैं अपने विचारों में बहुत स्पष्ट हूं, राइट, बहुत स्पष्ट है। लेकिन दुर्भाग्य दुर्योधन का यह है कि जो उसकी स्पष्टता है वो गलत चीजों की स्पष्टता है, यानी कि जो उसको स्पष्ट है, जो भ्रम में नहीं है, क्योंकि भ्रम में कौन पड़ता है, जो थोड़ा सा धर्म को भी मानता है, या कह दीजिए चरित्र को भी मानता है लेकिन व्यवहार को भी मानता है, चरित्र को भी मानता है व्यवहार को भी मानता है, तो जब चरित्र में पड़ता है तो लगता है नहीं करना चाहिए, व्यवहार में जब जाता है तो लगता है कि इसको कर लेना चाहिए, तो वो भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन दुर्योधन एक ऐसा चरित्र है उसको कोई भ्रम ही नहीं है, वो पूरी की पूरी तरह से व्यवहारिक आदमी है। मुझे राज्य चाहिए तो जैसे भी मिले मुझे राज्य चाहिए, मुझे अर्जुन या पांडवों को नष्ट करना है तो अब जैसे भी नष्ट हो जाए उसे नष्ट करना है, द्रौपदी से बदला लेना है तो चाहे जो भी हो जाए बदला लेना है, मतलब वो उद्देश्यों में अपने स्पष्ट है। लेकिन उसके साथ संकट ये है कि जो उसकी स्पष्टता है वो कुमति वाली स्पष्टता है, अच्छी वाली स्पष्टता नहीं है। तीसरे हैं कृष्ण। कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट है, उनके मन में कहीं कोई द्वंद नहीं, जरा सा भी द्वंद नहीं। गोपियों को छोड़ के वृंदावन से मथुरा जाना है, एक मिनट लगा, मथुरा से द्वारका जाना है, एक मिनट लगा, ठीक है मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, एक मिनट लगा, आगंतुकों के पांव धोने हैं, एक मिनट लगा, वो द्वंद में है ही नहीं है, कृष्ण द्वंद में नहीं है। लेकिन अर्जुन से इनका जो अंतर है वो ये है, कृष्ण की जो मानसिक स्पष्टता है वो सही स्पष्टता है, अच्छे रूप की स्पष्टता है, यानी कि वो सुमति की स्पष्टता है, वो वास्तविक स्पष्टता है जो होनी चाहिए। यानी कि दुर्योधन की स्पष्टता नकारात्मक है, निगेटिव है, और कृष्ण की जो स्पष्टता है वो पॉजिटिव है, राइट मित्र। और अर्जुन इनके बीच में फंसा हुआ है। तो अर्जुन की का ये सौभाग्य था, संयोग था कह लीजिए, अर्जुन की अपनी ये योग्यता और क्षमता थी कि कृष्ण उसे मिले। इसीलिए देखिए कि वो हर मामले में कृष्ण की राय लेता है, उसको मालूम है कि मैं सही निर्णय नहीं ले सकता, उसको मालूम है। तो फिर उसने कृष्ण को हर जगह सामने रखा, आगे रखा कि आप बताइए, और फिर जब कृष्ण निर्णय लेते हैं तो उस पर फिर वो सवाल नहीं करता है, सवाल तो गीता में शुरू में किए, इसके बाद तो सरेंडर ही कर दिया है, उस पर फिर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है और फिर उस पर अमल भी करता है। ये नहीं कि केवल सुन लिया, भरोसा कर लिया और बात खत्म हो गई, वो एक्शन में भी आता है। आफ्टरऑल महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना शामिल, तो एक्शन में आता है। मित्रों इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हम सब चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, याद रखिए कि दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात तो यह कि हम द्वंद में न रहें, दुविधा में न रहें, हमारे दिमाग में स्पष्टता हो, हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और किस तरीके से किया जाना चाहिए, यह बहुत स्पष्ट हो। लेकिन जो किस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो स्पष्टता है, वो स्पष्टता सही दिशा की स्पष्टता होनी चाहिए। मान लीजिए मित्रों कि आपका रास्ता ही गलत दिशा की ओर जा रहा है, तो वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा कैसे सकेगा। अगर आप दुर्योधन की तरह समझ लेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो रास्ता मालूम है, जबकि आपको सही में रास्ता नहीं मालूम है, क्योंकि जिसे यह मालूम हो कि यार पता नहीं ये रास्ता सही है या नहीं है, वह तो दूसरे से पूछ लेगा, कृष्ण से पूछ लिया अर्जुन ने, लेकिन दुर्योधन तो यह मालूम ही था ना कि मैं तो जिस रास्ते पर जा रहा हूं वो सही ही रास्ता है, जबकि वो गलत रास्ता था। तो जिस गलत रास्ते पर वो जा रहा था, उस गलत रास्ते ने उसे उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां उसे पहुंचना चाहिए था। मित्रों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। नहीं नहीं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुझे मालूम है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, मुझे मालूम है कि नौकरी कैसे करना चाहिए, मुझे मालूम है कि खेती कैसे करना चाहिए। जबकि सही यह है, सच यह है कि उन्हें मालूम नहीं है। देख लिया, कहीं सुन लिया, अपने दिमाग में एक इंप्रेशन बना लिया, बस उसी को सही मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, और फिर दुविधा रहित होकर, द्वंद रहित होकर के वो अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। चल तो रहे हैं, एक्शन में है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं, या तो आधे में ही पहुंच करके रह जा रहे हैं या फिर किसी गलत जगह पर पहुंच जा रहे हैं। मित्रों, याद रखिए, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं वो यह कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको वेरीफाई कीजिए, और वेरीफाई किन से करेंगे, एक्सपर्ट लोगों से वेरीफाई कीजिए। और एक्सपर्ट की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये कि देखिए कि वो सफल हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो एक ऐसे बिजनेसमैन से पूछिए जो वास्तव में, जिसने छोटे से शुरुआत की हो और सफलता हासिल कर ली हो, या छोटे से शुरुआत नहीं भी की हो लेकिन जो सफल तो हो। आप एक ऐसे बिजनेसमैन से पूछेंगे जो कभी सफल ही नहीं हुआ, खुद ही जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो आपको सही तरीका नहीं बता सकता है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब, जो कमलेश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब मैं इंटेलेक्चुअल हो गया हूं, इसका मतलब है कि मेरे भ्रम का निवारण हो गया है, मैं समझ गया हूं कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। और मुझे लगता है मित्रों कि अगर आप समझ गए हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, चलना कैसे चाहिए, तो मान करके चलिए कि आधा तो आप पहुंच ही गए हैं। और अगर ये नहीं मालूम है तो मान करके चलिए कि आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। मित्रों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है, और कमलेश, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, और अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपके भ्रम के जितने भी क्लाउड्स थे, बादल थे, वो छट चुके हैं। और सच पूछे तो ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं, इसका बस केवल एक छोटा सा यही मकसद है कि वो आपके दिमाग को इस लायक बना दे कि आपकी आंखों से, दिमाग की आंखों से आपको वो रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे, जो धौलपुर, जो एक हाउस उसको कहते हैं, जो शाहजहां रोड पर दिल्ली के स्थित है, वहां इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठाकर अंततः जो सफलता की जो सूची होगी उसमें आपको स्थान दिला सके। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से इस विषय पर इजाजत चाहूंगा, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।